ابن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، أجل اللهم له الفرج ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. وقال: قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل من السماء مائدة تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قرآن کریم کی چار آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس سے پہلے کہ میں ان آیتوں کی روشنی میں بیان شروع کروں، بہتر محسوس ہو رہا ہے کہ دو باتوں کی وضاحت ابتدا میں کر دی جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج غدیر کے دن کو تیسرا دن ہے. یقیناً 120,000 کا وہ مجمع غدیر کے میدان میں آج رات تک تھا. چوتھے دن صبح کو یہ پھر قافلے اپنی اپنی منزلوں کی جانب مختلف سمتوں میں روانہ ہوئے. ابھی تک غدیر کے میدان میں وہ حج کر کے واپس آنے والے سارے کے سارے موجود تھے، اور بیعت کا سلسلہ جاری تھا. تو یہ غدیر کا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن جیسا کہ آپ کے علم ہے، میری جتنی بھی تقاریر ہوتی ہیں جہاں پر دوسرے علماء اور ذاکرین اپنا بیان مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد کے مرحلے سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. تو بس یہ خیال رکھیے گا کہ غدیر کی عظمتیں، غدیر کی برکتیں، غدیر کے فضائل، اس کا انکار نہیں، لیکن دو دن سے آپ سن رہے ہیں. جہاں تک بات پہنچائی ہے قابل احترام علماء کرام نے، قابل احترام ذاکرین نے، قابل احترام خطبہ نے، اب اس کے بعد کا مرحلہ مجھے طے کرنا ہے. تو یہ ایک بات ذہن میں رہے. اور دوسری بات یہ کہ اگرچہ آج کی یہ تقریر ایک اور مناسبت بھی لیے ہوئے، لیکن خود غدیر ہی کا وہ بیان جو مجھے کرنا ہے وہ اتنا طولانی کہ میں مومنین کرام سے بھی شرمندہ ہوں اور امام معصوم سے بھی، کہ آج کی دوسری مناسبت یہ ہے کہ آج کی اس تقریر میں الاسر اسلامک سینٹر نے ہمارے 10ویں امام امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے جشن کو بھی شامل کیا ہے. 10ویں امام کی ولادت کی دو تاریخیں ہمارے پاس ہیں، ایک 5 رجب جو امام زمانہ کی دعا میں بھی ہے کہ اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب، اور ایک ہے 15 ذی الحجہ. لیکن خود غدیر کے حوالے سے اتنی لمبی بات کرنا ہے کہ 10ویں امام کا ولادت کے عنوان سے حق تو ادا نہیں ہوگا، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ دوران تقریر غدیر ہی کے عنوان پر 10ویں امام کی 3 حدیثیں اس طرح بیان کروں کہ 10ویں امام کا تذکرہ بھی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جو اصل میرا موضوع بن گیا ہے وہ سلسلہ بھی آگے چلے. اب یہ دو تمہیدی باتوں کے بعد، قرآن کریم کی 4 آیتوں کی میں نے تلاوت کی. خطبے میں سب سے پہلی آیت الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ، یہ سورہ اعراف کی وہ آیت ہے جو غدیر کے میدان میں پیغمبر نے اپنے خطبے کے تقریباً آخر میں تلاوت کر کے، اس آیت کو خطبے میں تلاوت کر کے مجمع سے یہ کہا کہ اس کو دہراؤ. تمام تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس دین حق کی جانب ہماری ہدایت کی، اور اگر وہ ہدایت نہ کرتا تو ہم خود سے اس قابل تو نہ تھے کہ ہدایت کو پاتے. تو یہ پہلی آیت ویسے ہی خطبے میں، بہت سے علماء اسی کو تلاوت کرتے ہیں تو خطبہ بھی ہے، اور غدیر خم کی ایک طرح سے تعصی بھی کہ پیغمبر نے اس مجمع سے کہا تھا کہ اس آیت کو میرے ساتھ دوہراؤ، اور یہ مجمع بھی اسی مجمع کا ایک حصہ ہے. فلیبلغ الشاہد الغائب کہہ کر، لیکن اس پر میں ان قریب آتا ہوں. وہ پہلی آیت تھی. اس کے بعد وہ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی یہ خطبے کے بالکل شروع میں تھی، اور پھر خطبے کے آخر میں تین آیتیں تھیں. ان میں سے ایک آیت تھی جو غدیر خم کا آغاز ہے. غدیر کا آغاز یہ نہیں ہے کہ علی مولا، غدیر کا آغاز ہے میں مولا ہوں. اس کے بعد کہا کہ علی مولا ہے، تو وہ جو آغاز ہے پہلی آیت وہ ہے جس میں قرآن کہتا ہے النبی بالمؤمنین من اولا بالمؤمنین من انفسہ. یہ وہ آیت ہے جسے بنیاد بنا کر پیغمبر نے غدیر کا اعلان شروع کیا. سورہ احزاب کی آیت کے نبی تمام مومنین پر ان کے نفس سے زیادہ اولویت اور حق اور اختیار رکھتا. تو نبی کا یہ حق جو نبی کو مولا قرار دیا جا رہا ہے، یہی سوال تو کیا تھا غدیر، یہ تو آپ دو دن سے تو ویسے ہی سن رہے ہیں، اور جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے یہ واقعات سنیں. الست بک مولا، جو سوال کیا تھا کیا میں تم سے زیادہ تم پر حق نہیں رکھتا، وہ یہی آیت تھی جو آج میں نے تلاوت کی ہے. یہاں سے غدیر شروع ہوئی. اور دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، یہاں پہ غدیر کا پیغام مکمل ہوا. وہ میں ان قریب بتاؤں گا، لیکن پہلے آیت کا ترجمہ کر دوں کہ غدیر کا آخر پیغام تھا کیا. وہ اس دوسری آیت، یہ بھی سورہ احزاب کی آیت، خبردار ما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ، خبردار نہ کسی مومن مرد کو یہ حق ہے نہ کسی مومنہ عورت کو. عموماً احکامات دین آتے ہیں ایک ہی لفظ سے کہ مومنوں پہ یہ چیز واجب ہے، اب مرد عورت دونوں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں اس وقت خدا خاص طور پہ ڈانٹ کے کہہ رہا ہے، الگ الگ بیان کر کے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. خبردار نہ کسی مومن مرد کو یہ اختیار ہے نہ کسی مومنہ عورت کو. اذا قضى الله ورسوله امره، کہ جب اللہ اور اس کا رسول اس کے کسی معاملے میں فیصلہ کرے، اس کے ان يكون لهم الخيارہ، تو وہ اپنا آپشن یا اپنا اختیار یا اپنا چوائس استعمال کرے. نہیں، کسی مومن مرد اور عورت کو اختیار نہیں، وہاں سے جو حکم آ گیا ماننا ہی پڑے گا. یہاں پہ غدیر کا پیغام مکمل ہے. تھوڑی وضاحت تقریر میں آج کرنا. اور تیسری آیت، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. سورہ مائدہ کتنا پیارا سورہ، نمبر ہی اس کا ہے پانچ، پانچواں سورہ ہے پانچ. اور آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، قرآن کریم میں کل 114 سورہ ہیں نا، یہ آیت 114 نمبر کی. یہ بتا رہی کہ عید کب منانا چاہیے. عید کسے کہتے ہیں؟ عید. اب آپ کو معلوم ہے نا کہ غدیر خم کا ایک نام ہے یوم العہد الموعود، عہد کا دن، یوم المیثاق الماخوذ، جس دن ہم سے ایک ایگریمنٹ کیا گیا، یوم الجمع المسئول. یہ سارے غدیر کے الگ الگ نام. چوتھا نام ہے العید الاکبر. کائنات کی سب سے بڑی عید العید الاکبر. اب عید کہتے کسے؟ عید اکبر کا تو ہم بعد میں تذکرہ کریں گے، پہلے تو عید اصغر یعنی عید کہتے کسے؟ وہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے سورہ مائدہ میں آیا. دیکھیں الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت بھی سورہ مائدہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک کی آیت بھی سورہ مائدہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ کی آیت بھی سورہ مائدہ، اور جو میں نے پانچ مجلسیں پڑھی پچھلی، تعاونوا علی البر والتقوی، وہ بھی سورہ مائدہ ہے. اور نمبر بھی اس کا نمبر پانچ، یعنی بہترین سوروں میں سے ایک ہے اگرچہ قرآن کا، اور سورہ بہترین. اب 114 نمبر کی آیت ہے، عیسیٰ بتا رہے عید کسے کہتے ہیں. فارسی کا ایک محاورہ ہے، فکر ہر کس بقدر ہمت اس، ہر آدمی کی جتنی اپنی کیپیسٹی یا ہمت ہوتی ہے اتنا ہی وہ سوچتا. بچے سے پوچھو تمہیں سب کیا چاہیے، وہ کہے گا کہ مجھے کٹ کیٹ چاکلیٹ چاہیے. آپ سے پوچھے تو آپ کہیں گے آپ کو بی ایم ڈبلیو چاہیے. تو خیر ہر ایک کی اپنی ہمت. ईसा के हवारी 12, वो हजरत ईसा से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप कुरान कहता है, पूरे कुरान में लफ्ज ईद सिर्फ एक दफा आया है और वो ईसा आयत में, काला ईसा इब्न मरियम, मरियम का बेटा ईसा कह रहा है, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल मिन अस्समाए माइदा, ऐ खुदा रब्बना, ऐ हमारे पालने वाले, आसमान से नाजिल कर एक माइदा। और इसी आयत की वजह से पूरे सूरे का नाम सूरह माइदा पड़ा। माइदा माने दस्तरखान, ऐ खुदा आसमान से एक दस्तरखान नाजिल कर, क्योंकि इससे पहले वाली आयत थी कि हवारी कह रहे हैं कि हमें एक दस्तरखान चाहिए। ईसा ने अपने हवारियों की ख्वाहिश आगे पहुंचा दी। इसमें से 12 में से 11 तो कम से कम बिल्कुल ठीक थे ना, धोखा तो एक ने दिया, वो भी बहुत आगे जाकर आगे पहुंचा। अंजल नमीन समाय मायदा, हमारे लिए आसमान से दस्तरखान नाजिल कर। ये दस्तरखान क्यों नाजिल कर? के तकून ईदा, जब तू ये दस्तरखान नाजिल करेगा ये हमारे लिए ईद बनेगी, ले अव्वले ना व आखिर ना, हमारे पहले से लेके आखिर तक हमारे पूरे ग्रोह के लिए ये ईद बनेगी। कब? जब आसमान से दस्तरखान नाजिल होगा। क्या मतलब दस्तरखान का? अल्लाह की एक नेमत नाजिल होगी। वह आयतन मिन का, ये हमारे लिए ईद भी बनेगी, ये तेरी एक निशानी भी होगी, वर्जुकना और हमको रोजी भी मिलेगी, वह अंता खैर और राजकीन, और तू बेहतरीन रोजी देने वाला। ईद, ईद हजरत ईसा के हवारी एक नेमत मांग रहे हैं और ईसा कह रहे हैं कि आए खुदा अगर तूने ये नेमत हमें दे दी वो दिन हमारे लिए ईद का दिन होगा। जब एक नेमत के मिलने पर जो एक दस्तरखान है वो दिन ईद करार पाता है, तो जिसे कायनात की सबसे बड़ी नेमत मिल जाए वो मोमिनीन अगर ईद अकबर ना मनाए तो हक अदा नहीं कर पाएंगे कुरान का। ईसा ने बताया ईद कब मनाई जाती है? जब आसमान से कोई नेमत नाजिल हो, दुनिया की बात नहीं, आसमान से नेमत नाजिल हो ईद मनाओ। एक नेमत के मिलने पे ईद, वो तो नेमत कुबरा है, वो तो नेमत उजमा जो आज साहिबान ईमान को मिली। और फिर कहा कि ये जो तू एक नेमत नाजिल करेगा ये एक आयत बनेगी तेरी, मिनका तेरी, आयतुल्लाह। तो आयतुल्लाह के नाजिल होने पे जब ईद मनाई जा रही है तो जो आयतुल्लाह कुबरा हो, जो आयतुल्लाह उजमा हो, जो पुकार पुकार के कहता हो कि अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी तो मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। और फिर कुरान कह रहा है वर्ज़ुकना, ये ईद का कंसेप्ट जो कुरान दे रहा है सूरह मायदा की आयत नंबर 114 वर्ज़ुकना, और ये जो एक नेमत तू नाजिल कर रहा है आसमान से इससे हमें रिस्क मिलेगा। खुतबाए गदीर के आखिर में देख लीजिए, पैगंबर इस्लाम अजीब तरीके से मौला का तारुफ करा रहे हैं, तो खुतबाए गदीर के आखिर में एक लफ्ज आता है, और इसी अली के जरिए से अल्लाह दुनिया वालों को रिस्क अता करता। वहां पे ईसा के हवारी दस्तरखान मांग रहे, कहा कि इससे हमको रिस्क मिलेगा, ईसा के हवारियों को रिस्क मिल रहा है, और अली वो है कि वह बे युम नहीं रोजे कल वरा, खाली एक गुरोह को रिस्क नहीं मिलता है, कायनात की सारी मखलूकात को रिस्क मिला करता है अली के वसीले और अली के वास्ते। लेकिन खास जिस लफ्ज की वजह से मैंने पूरी आयत की तिलावत की वो ईद, ये बताया ईद कब मनाई जाती? जब अल्लाह की तरफ से ऐसी नेमत आपको मिले जो अव्वल से आखिर के लिए हो, जिसके जरिए से आपके रिस्क का अहतमाम हो रहा हो, और जो अल्लाह की निशानी बने, इसको ईद कहते हैं। अब आइए इस ईद को जरा सा, ये होगा गदीर का वो पैगाम जो वहां से शुरू होगा जहां पे दो दिन से उलमा और जाकिरीन ने अपनी बात पहुंचाई है। मगर उससे पहले एक छोटी सी बात, कुरान ने कहा कि नेमत कहां से नाजिल हुई, कुरान ने कहा कि ईद मनाने के लिए अल्लाह की निशानी कहां से आई, कुरान ने कहा रोजी कहां से मिली, आसमान से, आसमान से, आसमान से। तो याद रखिए कि जो नेमत उज़्मा हमको मिली है, जो आयतुल्लाह कुबरा हमको मिली है, जो अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत मिली है, ये भी आसमान वाला है, ये जमीन वाला नहीं है। यूपी की बुजुर्ग खवातीन जमीन वाला किसे कहती हैं, ये तो शायद अब वो औरतें भी जिंदा ना रही हो, ये आसमान वाला है। फर्क क्या है? आसमान वाला गदीर में मिलता है, जमीन वाला सकीफा में मिला करता। ये जिसके हवाले से बात की जा रही है, आसमान वाला, आसमान वाला। और देखिए इसीलिए मौला पुकार पुकार के क्या कहते हैं, मुझसे सवाल करो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं, क्योंकि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। आप जहां से आए हैं, जिस इलाके से आए हैं, वहां के रास्ते आप ज्यादा जानते हैं ना। जो हैदराबाद के मोमिन है हैदराबाद के रास्ते जानते हैं, कराची वाले कराची के जानते हैं। जहां का आदमी हो वही के रास्ते ज्यादा जानता है। कुरान कह रहा ईद कब मनाओ, जब आसमान से तुम्हें नेमत मिले। मौला कह रहे कि मुझसे पूछो जो पूछना है, मगर जमीन से ज्यादा आसमान के बारे में पूछना, क्योंकि आसमान के रास्तों को मैं ज्यादा जानता हूं। और यही वजह कि आने वाला आसमान से आया तो उसका हर एहतमाम आसमान से ही हुआ है भाई। जब उसकी विलादत का वक्त आ रहा है, मदद के लिए मक्के की औरतें नहीं आई हैं, मदद के लिए बनी हाशिम की औरतें नहीं आई हैं, मक्के के लिए आसमान से उतर की औरतें आई हैं। और जब बच्चा पैदा हुआ उसे कपड़े में लपेटा गया, वो कपड़ा भी कहीं अबू तालिब के घर से नहीं आया है, वो आसमान से आया है। और जब उसके लिए पहली गिजा का इंतजाम हुआ, कौसर का जो पानी जाम में लेके हवा आई थी, वो भी ये दुनिया के हद तक जमजम का चश्मा भी नहीं था, वो भी आसमान ही से आया है। तो बच्चा दुनिया में आ रहा दुनिया का ही नहीं, वो आसमान का है। तो उसका लिबास भी आसमान से आया, उसकी गिजा भी आसमान से आई, विलादत के मौके पर मदद करने वाला गुरु भी आसमान से आया। यह आसमान का था, यह आसमान का था। इसलिए अल्लाह के रसूल ने जब उसे मांगा, हमारे यहां पाकिस्तान में अक्सर यह होता है, यहां पे मुझे हिंदुस्तान के मोमिनीन भी कुछ नजर आ रहे हैं, बहुत भोंडी मिसाल दे रहा हूं, बहुत भोंडी, कभी कभार ऐसी भोंडी बातें मुझसे भी सुन ले, दूसरों से तो आप मिंबर पे झुकते सुनने के आदि बनी गए। तो एक जमाने में हमारा मिंबर इल्म था, हिकमत थी, कुरान था, हदीस था, आजकल झुकते हैं। अब ये झुकतों को मैं समझा नहीं पाऊंगा, इसे क्या कहते हैं, ये पंजाबी जबान का लफ्ज है। तो एक आध बात मुझसे भी सुन ले कि अल्लाह का रसूल, देखिए आसमान के सिपाही, आसमान से आया। कुरान ने कहा ईद किसके लिए कब मनाना, जब आसमान से आए अल्लाह की नेमत। पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका से मदद चाहिए, कॉन्टेक्ट किया अमेरिका से। चले आजकल तो खैर कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया और कोविड ने तो हर चीज को ऑनलाइन डाल दिया, लेकिन आम तरीके से फौरी मदद चाहिए तो क्या होता, तो पाकिस्तान का डेलीगेशन खुद वाशिंगटन गया है और वहां जाके स्टेट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर रहा। इतना वक्त नहीं है, फौरी मदद चाहिए ना। तो अब ये नहीं है कि अब हम कराची में पाकिस्तान में बैठे हैं और कॉरेस्पोंडेंस हो रही है और खत भेजे जा रहे हैं, नहीं, अब डेलीगेशन खुद वहां गया जहां से मदद चाहिए। ये आसमान वाला, ये अल्लाह की नेमत आसमान से आई। ईसा ने कहा कि ईद उसी वक्त मनाओ, इसीलिए पैगंबर ने जमीन में बैठ के नहीं मांगा, पैगंबर खुद आसमान पर गए। शबे मेराज एक मर्तबा कह रहे वजअली मिन लदुनका सुल्ताना नसीरा, अय खुदा मुझे एक मददगार अता फरमा। ये दरख्वास्त जमीन की नहीं है, ये सातवें आसमान पर अर्शे इलाही पे जाके दरख्वास्त दी गई है, क्योंकि वो आसमान वाला है, वो आसमान से आया, उसका हर इंतजाम आसमान से हो रहा है। हत्ता ये अभी तक तो हमारे यहां ये है। अब ये जो मैं मिसाल दे रहा हूं ये भी जरा भोंडी सी मिसाल है। यहां पे जो लोग हैदराबाद के हैं, आपकी अगली नस्ल तो नहीं होगी, वो तो कहेगी हम ओजी हैं, लेकिन अभी हैदराबाद के। शादी का वक्त आता है तो आपकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि जहां की आप हैं ना वहीं की लड़की आपको मेरे हैदराबाद की हो तो क्या कहना। कराची वाला है तो वो कराची की लड़की ढूंढता, और पंजाब वाला है तो पंजाब की लड़की ढूंढता, एक नेचुरल और फितरी बात। अब चूंकि ये अल्लाह की नेमत आसमान से आई, जब शादी का मौका भी आया तो दुनिया के रिश्ते नहीं लिए गए, रिश्ता भी आसमान से आया, निकाह भी आसमान पे पड़ा गया, बारात भी आसमान से आई। वो ऊंट को चलाने वाले जिब्राइल थे, हांकने वाले मीकाईल थे, बाराती के तौर पर 70,000 हूरें थी, आसमान से आया। और यही वजह पैगंबर की हिफाजत कर रहा है वो आसमान से आकर, क्योंकि पैगंबर ने मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा के आगे जाकर इस सिपाही को मांगा था ना, लेकिन आया आसमान से, आसमान से आया। अभी आजकल अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला बन गया। देखिए मैं आमतौर पर इस किस्म की मिसालें देता नहीं, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि हर एक दे रहा है और आप लोग लूटे जा रहे हैं उन मिसालों पे, तो एक आध जुमला कहने का मुझे भी हक है। मालूम हुआ कि वो इतना असलहा और इतनी इतनी चीजें अमेरिकन फोर्सेस, इसको वापस ले जाना, वो पाकिस्तान से उन्होंने रास्ता भी मांगा और कैसे उसको ले जाए, वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस। कहा क्यों? कहा कि जब ये लोग आए थे ना तो अमेरिका से आए थे, जो अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस, उनका सारा असलाह वगैरह भी वहां से आया, सारी चीजें उनके लिए वहां से आ रही थी। खाने पीने की तो मैं मिसाल ही नहीं देता हूं, लेकिन असलाह। अब आसमान के सिपाही आया, पैगंबर की हिफाजत कर रहा, ओहद का मैदान है, उसके हाथ से 9 तलवारें टूट गई हैं, आखिरी मरहला वो आ गया कि उसके पास कोई तलवार भी बाकी नहीं रही है, पैगंबर की कमर में तलवार लटक रही है। या रसूल अल्लाह, ये आपकी हिफाजत कर रहा है, आपके पास तलवार है, इसके पास तलवार ना रही, अपनी तलवार दीजिए। कहेंगे ये मेरा सिपाही है ही नहीं कि मैं अपनी तलवार दूं, ये आसमान से आया है तो इसकी तलवार भी आसमान से नाजिल होगी, और ना फतह इल्ला अली ना सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार के साथ नाजिल होगी। आसमान का सिपाही, असलाह भी वहां से आएगा, हथियार भी वहां से आएगा। और एक और एक नेचुरल सी बात मैं कह रहा हूं, बस इस नुक्ते के अख्तिताम पर हूं, इसके बाद मैं फिर अपने असल मौजू पे आता हूं। और वो ये कि एक नेचुरल बात है जिस पे इस्लाम को कोई एतराज नहीं है, जो अब मैं कहने जा रहा हूं, जैसे वो शादी की मैंने मिसाल दी ना, तो कोई तासुब नहीं है कि अगर आदमी अपने इलाके की, अपने कल्चर की लड़की को तलाश करे या लड़की वाले लड़के को। उसी तरह एक और बात है, वो ये कि किसी इलाके का कोई आदमी बहुत तरक्की कर ले और बहुत ज्यादा उसका एहसान माना जाए, तो जिस इलाके का होगा ना वहां के लोग बहुत खुश होंगे। मसलन कराची का कोई मोमिन नोबेल प्राइज हासिल कर ले, तो हमारा क्या ताल्लुक नोबेल प्राइज से, हमें तो नोबेल की स्पेलिंग भी नहीं आती, लेकिन बहरहाल हम खुश होंगे हमारे इलाके के आदमी ने इतना बड़ा कारनामा किया। हैदराबाद का कोई मोमिन कोई बहुत बड़ी दरियाफ्त कर ले, तो हैदराबाद के मोमिन खुश होंगे कि भाई हमारे यहाँ का एक शख्स इतनी तरक्की कर गया। और किसी इलाके का कोई आदमी है तो उसको वो भी अपने, क्योंकि मिसाल का ताल्लुक इलाके से नहीं, मैं तो बात कर रहा हूं अपनी फील्ड की। किसी इलाके का कोई आदमी मर्जे बन जाता है, जैसे आगे सिस्तानी मर्जे बन गए, अब सिस्तान के लोग खुद ब खुद एक फख्र महसूस करते, जबकि उनकी मर्जियत सिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। अगर आगे खामेनाई मर्जे बन गए तो खुमैन के सारे मोमिनीन खुद ब खुद, एक नेचुरल बात है शायरी की दुनिया के अंदर भी। अब जिस वक्त हमारे बरादर मोहतरम अजलाम कलीम साहब के दादा का तस्करा होता है, नसीम अमरोही साहब, पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया मानती, अमरोहे के लोग खुद ब खुद खुशी महसूस करते होंगे। फितरी बात है ना कि जिस इलाके का आदमी तरक्की कर जाए, चाहे उसका ताल्लुक बाद में सारी दुनिया से हो जाए, जहां से आया है वहां के लोगों को खुद ब खुद खुशी होगी। चुनाचे ये आसमान से आया, जब आसमान से आया है तो जब शब हिजरत बिस्तर रसूल पे लेट कर अल्लाह की रिजा ले रहा है तो तारीफ करने वाला कसीदा दुनिया वाले नहीं पढ़ रहे, आसमान से उतर के जिब्राइल और मीकाईल कह रहे बखिन बखिन लगा ये अपना अभी ताले। तो विलादत से लेके जिंदगी के आखिरी मरहले पर, अब जब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कुरान ईद का कंसेप्ट क्या देता है, ईद मनाओ उस वक्त जब तुम्हें आसमान से कोई नेमत मिले। तो हमें तो आसमान से ऐसी नेमत मिली कि चले आखिरी बात कह दूं, वरना इस पे पूरी तकरीर भी हो सकती है। एक आखिरी बात, और वो ये हत्ता ये कि इसके दुश्मन पर अजाब भी आसमान ही से आ रहा है। बाकी अंबिया के अंदर आप देख लीजिए, जिन कौमों पे अजाब आया है 99% या वो अजाब दुनिया से आया और या फिर ज्यादा से ज्यादा बादलों तक, मगर एक अजाब ऐसा है जो बराह रास्त आसमान से आ रहा है। मांगने वाले ने भी अजाब मांगा आसमान से था, उसे भी पता था कि यह आसमान का सिपाही है, यह आसमान से आने वाला है। हारिस इब्ने नोमान खोरी का वाकया किसको नहीं मालूम। और दो बातें उस वाकये के हवाले से ऐसी मैं बता रहा हूं जो इस पैगाम गदीर ही को वाजे कर रही है। अच्छा, पैगाम गदीर है क्या? मैं अभी ईद पर आ रहा हूं, ईद का पैगाम मुकम्मल नहीं हुआ। गदीर क्या? ईद उल अकबर, सबसे बड़ी ईद। लेकिन पहले ये बात पूरी हो जाए, इसके मुखालिफ का अजाब भी आया तो आसमान से आया, और इसके लिए मेरे पास इसराइल की बहुत मिसालें हैं। यहूदियों पर जर्मनी में जो जुल्म हुआ था, होलोकॉस्ट, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा, जिन जिन ने जुल्म किया था वो कहीं भी जाके छुपे, यहूदी उसको पकड़ के लाए हैं वहां से। अर्जेंटाइन का 1961 का वाकया तो मशहूर हो गया है, लेकिन इसके अलावा भी। तो अब ये जो कि आसमान वाला है, इसने जिसने इसकी मुखालिफत की उस पर अदाब भी आसमान वाले ने भेजा, आसमान से आ रहा। और एक बात सुन लीजिएगा, अभी असल मैसेज बाकी है ईद, लेकिन मौला की विलायत का ऐलान पैगंबर ने अपनी 23 साल की जिंदगी में वाज़ह तौर पर सिर्फ दो बार किया, एक दावत जिले शीरा में और गदीर खुम के मैदान में। बाकी इन दोनों के बीच में अली की फजीलत, अली की मोहब्बत, अली का इस्लाम से ताल्लुक, मोमिन का अली से ताल्लुक, मोमिन मुनाफिक की पहचान, जन्नत का दारो मदार, ये सारे पैगामात मुख्तलिफ तरीके से दिए, मगर तू मेरा जानशीन है, वसी है, वली है, यह सिर्फ दो मरतबा ऐलान हुआ। पहला दावत जिलशिरा में खुल के बिल्कुल, और आखिरी दूसरी बार गदीर के मैदान, और दोनों बार इस ऐलान पे एतराज हुआ। दावत जिलशिरा में एतराज किसने किया? अबू जहल ने किया। गदीर खुम में एतराज किसने किया? हारिस इब्ने नुमान ने किया। और इस एतराज में एक एक पहलू आ रहा, अबू जहल ने जब दावत जिलशिरा में एतराज किया था, पैगंबर ने कहा ना, जब अली ने कहा कि अना नासिर या रसूल अल्लाह, मैं आपका मददगार हूँ, पैगंबर ने कहा तो फिर अंता वसी व खलीफती, तू मेरा वसी भी है, जानशीन भी है, खलीफा भी है। जब ये ऐलान, जब पैगंबर ने ये वादा किया, अबू जहल गुस्से के आलम में खड़ा हो गया, बायकॉट करके जाने लगा। ये बायकॉट भी एक अजीब हमारे यहाँ सिस्टम बन गया, गुस्से के आलम में बायकॉट करके जाने लगा, लेकिन जाते जाते जुमला कह गया। अबू तालिब को देखा और कहा, अबू तालिब तुम ही को अपने बेटे की इताअत मुबारक हो। सवाल यह है कि आखिर अबू तालिब से ही कहने की क्या जरूरत थी? अबू तालिब तो इस्लाम कबूल ही नहीं किया था, वो तो अबू जहल के अकीदे पे थे, बकौल बकौल लोगों के, वो तो उसके अकीदे पे थे, तो अबू तालिब क्यों इताअत करते अली की? अली की इताअत तो वो करेगा ना जो पैगम्बर का कलमा पढ़ चुका हो। पैगम्बर ने कहा ना, तू मेरा वसी है, तू मेरा जानशीन है। तो अबू जहल का जुमला बता रहा है कि अबू जहल तक को पता है कि अबू तालिब ईमान ला चुके हैं। वो अबू जहल है जो अबू तालिब के ईमान को मान रहा है, और ये आज का मुसलमान है जो अभी तक अबू तालिब के ईमान पे शक में पड़ा हुआ। दावत जिलशीरा में पहली बार खुल के अली की विलायत का ऐलान हुआ, और वहीं ये वाजे हो गया कि अबू तालिब के ईमान को तो आलम कुफर भी मानता। और दूसरा विलायत का ऐलान हुआ गदीर खुम में। हारिस इब्ने नुमान ने क्या कहा, हर एक को मालूम है, और बस यहीं पे मेरी गुफ्तगू का पहला हिस्सा मुकम्मल होगा। यही तो कहा, हर एक को वाकया मालूम है, मैं कैसे इस वाकये को दोहराऊं जो इतना मशहूर है। यही तो कहा कि ऐ मोहम्मद, तूने कहा अल्लाह एक है, हमने मान लिया। तूने कहा कि मैं रसूल हूं, मान लिया। तूने कहा नमाज है, हमने अमल किया। रोजा है, हमने अमल किया। जकात है, हमने अमल किया। हज है, हमने अमल किया। आखिर में जाते जाते तू अपने भाई को हम पर मुसल्लत करके जा रहा, ये तेरी तरफ से है कि अल्लाह की तरफ से? वाकई हर एक को मालूम। जब पैगंबर ने कहा ये अल्लाह की तरफ से है, तो उसने कहा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से, तो है अल्लाह आसमान से, आसमान से लफ्ज है मिनत समा, आसमान से मेरे ऊपर अजाब नाजिल कर। इसका जुमला क्या बता रहा है? पैगाम एक अबू जहल ने पैगाम दिया, और एक पैगाम ये पहले ऐलान विलायत में भी पैगाम आया अबू तालिब के ईमान का, और दूसरे में क्या पैगाम आया कि उसके ऊपर अजाब आया। लेकिन उसका जुमला बता रहा कि ये आदमी तौहीद को भी मानता है, रिसालत को भी मानता है, नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, जकात भी देता है, हज भी किए हुए है, कह रहा नहीं सबको मैं मानता, हम मानते चले गए, ये ऐलान नहीं मानेंगे। पता चला कि अगर खाली तौहीद हो वो नजात नहीं दिलवाती, खाली रिसालत नजात नहीं दिलवाती, खाली नमाज नजात नहीं दिलवाती, खाली हज नमाज नहीं दिलवाता। वो नजात उस वक्त मिलती है जब आदमी साथ में अली की विलायत को भी मानता हो। बगैर विलायत के कोई इबादत काम नहीं आएगी। खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतर साहब का एक जुमला बहुत मशहूर है, जिस जमाने में मेलबर्न में वीडियो पे मजलिसें लगा करती थी, हमारे जुल्फिकार आब्दी साहब तो वाकिफ हैं, तो ये मजलिस कई दफा यहाँ पे लगाई गई क्योंकि बहुत पसंद आई लोगों को। लेकिन एक छोटी सी मिसाल, एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसका बेटा घबरा गया, भाई बाप मर गया, पता नहीं उसके ऊपर कब्र में क्या गुजर रही। घबरा के आलिम के पास गया, कहा मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता था। उन्होंने कहा अच्छा नमाज नहीं पढ़ता था, एक तरीका है, क्या उम्र है तुम्हारे बाप की, इतने साल की नमाजें पढ़वा लो। उसने पैसे दिए और इतने साल की नमाजें पढ़वा ली, मसला खत्म। फिर आया कह रहे अरे मुझे पता चला कि वो तो ज़कात और खुम्स भी नहीं देता था। कहा कोई बात नहीं, आओ आज हिसाब करके ज़कात और खुम्स अदा हो जाए, भूरी हो गया। फिर आया कह रहे उन पर तो हज भी वाजिब था, मुझे अब पता चला। तो कोई बात नहीं, जो हज है वो उनकी तरफ से करवा लो, इतना खर्चा दे दो हज हो जाएगा। फिर एक दिन आया कह रहे मुझे पता नहीं था, वो तो अली की विलायत को भी नहीं मानते थे, अच्छा कितने पैसे दे दूं कि ये गुनाह भी माफ हो जाए। फौरन जवाब मिला, नमाजें रह गई तो तरीका है, रोजे रह गए तो तरीका है, खुमुत रह गया तो तरीका है, हज रह गया तो तरीका है, लेकिन अली की विलायत को नहीं माना तो दुनिया और आसमान की सारी दौलत दे दो तब भी निजात मिलने का कोई रास्ता नहीं है। ये हारिस इब्न नौमान ने भी बताया और ये खुतबा गदीर में पैगंबर ने भी इरशाद फरमाया। लेकिन अब लेकिन के बाद आइए थोड़ा मेरा अंदाज भी समझ लीजिए। लेकिन ये तो वाजी हो गया कि गदीर को ईद होना चाहिए, जितने उसूल कुरान ने बताए हजरत ईसा की जबान से वो सारे के सारे गदीर के वाकये में पूरे उतर रहे हैं उसूल, तो इसको ईद होना चाहिए। लेकिन अब एक सवाल ये है कि ईद को ईद कहते क्यों और ईद होना चाहिए का क्या मतलब है। थोड़ा सा खुश्क सा नुकता है लेकिन बहुत अहम है। देखिए इस्लाम में 10 फुरू दीन, ये 10 फुरू दीन जो है ना इसमें 4 की का एक ग्रुप बनाइए, नमाज जकात खुम्स उसी के साथ चला जाएगा और रोजा। नमाज और रोजा तो हमारे यहां इस तरह एक साथ बोला जाता है मुहावरे में, तो पाबंद है सौमो सलात, नमाज रोजे का पाबंद, एक ही चीज समझ लीजिए। और इतना हर एक को पता है कि कुरान करीम ने जितनी जगह नमाज का जिक्र किया जकात साथ साथ तकरीबन। अब ये 4 का एक ग्रुप बना ना, इसके इख्तिताम पर एक ईद आती है जिसे वैसे तो हम ईद उल फितर कहते हैं लेकिन अवामी जबान में कहा जाता है रमजान की ईद, रमजान की ईद। उसके बाद आइए हज, जिहाद, अमर बिल मारूफ नहीं, अच्छा अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर जिहाद का हिस्सा, उसकी हदीसें भी जिहाद के चैप्टर में मिलेंगी, जिहाद बिन नफ्स। और ये हज के साथ चुनांचे कुरान में जहां या अय्युहल लज़ीन आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियाम में हज की आयत खत्म हुई है, रोजे की आयत फौरन हज की आयत आई, और रिवायत में भी है कि गैबत के अंदर मोमिनीन का जिहाद उनका हज होगा। हज और जिहाद ये एक चीज, इस ग्रुप में भी 4 इबादतें आ गई, हज जिहाद अमर बिल मारूफ, इसके इख्तिताम पर एक ईद है उसे अवाम कहते हैं हज की ईद। 2 ईदें हमारे यहाँ बहुत मशहूर है ना, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, लेकिन अवामी जबान में ईद रमजान और ईद हज, एक रमजान की ईद है एक हज की ईद, ठीक। लेकिन अब आखिरी 2 चीजें रह गई हैं अभी फुरुए दीन में, 10 हैं, 8 हो गई, 2 रह गई, एक है तवल्ला एक है तबर्रा। ईद उत तवल्ला का नाम है गदीर और ईद उत तबर्रा का नाम है नौ रबीउल अव्वल, ये हमारे उलमा की टर्म है, क्योंकि ईद तवल्ला जरा मुश्किल लफ्ज लगता है तो आजकल उसको कहने लगे ईद विलायत, लेकिन फुरूए दीन में से 10 उसके पहले 4 का एक ग्रुप बनेगा, उसकी ईद का नाम है ईद उल फितर या रमजान की ईद, बीच के 4 का दूसरा ग्रुप बनेगा, उसकी ईद का नाम है हज की ईद, और तवल्ला की ईद है गदीर ईद उल तवल्ला, और 9 रबीउल अव्वल की अहमियत भी समझिएगा, उसका नाम है ईद उत तबर्रा, और हमारे 10वें इमाम ने 9 रबीउल अव्वल के हवाले से अहम तरीन हदीस इरशाद फरमाई कि हमारा शिया नहीं है जो 9 रबीउल अव्वल की ईद ना मनाए। अब यह एक मुख्तसर बात कर दूं, वो बात के लिए नहीं, ईद तवल्ला है गदीर, ये दो लफ्ज याद रखिएगा, आपने ईद बकरीद तो याद रखा, आपने रमजान की ईद और हज की ईद तो याद रखा, एक ईद तवल्ला ये लफ्ज याद रखिएगा गदीर, ईद तबर्रा 9 रबीउल अव्वल, इन दो के दरमियान क्या आता है करबला, गदीर और 9 रबीउल अव्वल के बीच में क्या आते हैं अय्याम अज़ा, इसके दरमियान क्या आते हैं गम के वो दिन जिसका ताल्लुक करबला से है। तो ये जुमला कहा गया कि गदीर की वजह से हुसैन शहीद किए गए और हुसैन की शहादत का जो खुदा इंतकाम इमाम जमाना से लेगा वो 9 रबीउल अव्वल की खुशी बनेगा, तो करबला दोनों ईदों को मिलाने वाले पुल का नाम है, इसका एक सिरा ईद गदीर है, इसका दूसरा सिरा 9 रबीउल अव्वल है, और इसी के दरमियान पहला अशर आएगा तो इंशाल्लाह, और ईद तबर्रा ईद गदीर का बादशाह कौन है, ताज किसके सर पर है, अली, और ईद तवल्ला का बादशाह कौन है, वो ताज किसके सर पर है, इमाम जमाना, यही वजह है कि इस साल पहले अशरे में इंशाल्लाह मैं इमाम जमाना और विलायत अली के उनवान पे गुफ्तगू करूंगा, और इमाम जमाना की सबसे ज्यादा तैयारियां किसने करवाई, दो आदमियों, आदमी तो गलत कह गया, दो हस्तियों ने, गदीर के खुतबे में कम से कम 4 जगह इमाम जमाना का पैगाम दिया है रसूल ने, कम से कम 4 जगह, कि देखो खाली अली को मानना काफी नहीं है, उस आखिरी इमाम को भी मानना पड़ेगा जो कायमोना कायम आले मोहम्मद है, गदीर के खुतबे में, और अल्लाह का रसूल मैदान गदीर में इमाम जमाना की तैयारी करा रहा, और दूसरी जानब सबसे ज्यादा तैयारी 10वें इमाम ने करवाई, जो विलादत के हवाले से बात है, वो कैसे, 10वें इमाम आखिरी इमाम थे जो लोगों के सामने थे, 11वें तो पहले दिन से कैद में, जिस दिन से उनकी इमामत शुरू हुई, और इमामत से पहले भी उनको छुपा के रखा गया, ये हालात बयान करने का वक्त नहीं है, तो 11वें तो पहले दिन से ही लोगों से दूर, और 12वां तो गाइबत में है, तो आखिरी इमाम 10वें थे, वो सारी तैयारी करा के गए, आज जिस चीज से लोग चिढ़ते हैं वो सब 10वें इमाम की तैयारियां थी, तकलीद चिढ़ते हैं ना लोग, 10वें इमाम ने निजाम बनाया, खमुश चिढ़ते हैं ना लोग, ये 10वें इमाम ने पूरा निजाम बनाया, फजाइल अहले बैत चिढ़ते हैं ना लोग, ज़ियारत जामिया की शक्ल में पूरा निजाम 10वें इमाम ने बनाया, इससे ज्यादा 10वें इमाम का हक अदा करने का वक्त नहीं है। अभी एक हदीस और आने वाली है, तो अब आइए आखिरी बात कहें, गदीर का नाम याद रखिएगा, जैसे रमजान के अख्तिताम पर ईद आती है ईद उल फितर, जैसे हज के बाद ईद आती है ईद उल अज़हा, वैसे गदीर का नाम है ईद तवल्ला, वैसे 9 रबीउल अव्वल का नाम है ईद तबर्रा, और पहली दो ईदों को ईद क्यों कहते हैं, यहां से मेरा पैगाम जो असल है वो, लेकिन मुख्तसर, ज्यादा आपको जहमत में नहीं डालूंगा, ईद फितर हो या ईद उल अज़हा, रोजों की ईद हो के हज की, ईद को ईद क्यों कहते हैं, ईद के माने हैं औद, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है वापस आ जाना, वापस पलटना, क्योंकि अब ये पहले आम माने समझिए फिर इमाम के बताए हुए कहा, क्योंकि ये दो खुशी के मौके हर साल पलट के आते हैं, इसलिए ईद को ईद कहा जाता है, हर साल पलट के आते हैं, नहीं खाली इतनी बात नहीं है, बहुत सारी चीजें पलट के आती हैं, ये दो मौके ऐसे हैं जब इंसान दो ईद, जब इंसान पलट के दोबारा मासूम बन जाता है, जब आप पैदा हुए थे तो मासूम थे ना, उन मानों में तो मासूम नहीं 14 मासूम, जब आप पैदा हुए तो मासूम थे, बच्चा मासूम होता है फिर गुनाह की, रमजान अगर आपने सही तरीके से गुजारा तो ईद के दिन आप हर गुनाह से बरी हो, आप पाक हैं, आप पाकीज़ा हैं, आप मासूम हो गए, सारे गुनाह आपके माफ है, यही तो ईद का पहला फायदा। ईद किसे कहते हैं? जब आदमी घूम के वापस मासूम बन जाए। घूम के वापस का क्या मतलब? अल्लाह ने भेजा तो मासूम है, कुल्लो मौलूदिन यूलिदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा मासूम पैदा होता है ना। रमजान तक आपने 11 महीने गुनाह किए, रमजान ने आपको पाक कर दिया, ईद के दिन आप दोबारा मासूम हो गए। और हज किसे कहते हैं? पूरी जिंदगी आपने गुनाह किए हैं, हज आपने कर लिया, एक बार सारे गुनाह माफ हो गए, आप दोबारा मासूम बन गए हैं। तो बकरीद के दिन आप मासूम होते हैं, ईद के दिन आप मासूम होते हैं, घूम के उस हालत में आ जाते हैं जिस हालत में आपको पैदा किया गया। गदीर भी इसी का नाम है कि आदमी जिंदगी भर गुनाह करे, जब गदीर को मान लेगा घूम के एक बार फिर मासूम बन जाएगा। नौरबिल अव्वल भी इसका नाम है कि सारी जिंदगी गुनाह किए लेकिन नौरबिल अव्वल का जश्न मनाया, घूम के दोबारा आपको मासूम बना दिया अल्लाह ने। लेकिन इसी में तो असल पैगाम छुपा है। ईद के दिन हम मासूम कब होते हैं? जब हमने रमजान में कोशिशें की, और रमजान में भी अगर हमारी शराबें जारी रही और रमजान में भी अगर हमारे गुनाह जारी रहे तो हमारे लिए ईद तो नहीं हुई ना। हज के बाद ईद के दिन हम कब मासूम होते हैं? जब हमने हज पूरा का पूरा उस तरीके से किया हो जो अल्लाह ने बताया। मिसालें तो बहुत है मेरे पास, मैंने बड़े दिलचस्प हज देखे, बड़े अजीब हज देखे, बड़े अनोखे हज देखे, बयान करने का वक्त नहीं है, रमजान अय्याम अज़ा में शायद थोड़ा वक्त मिले। तो हज आपको मासूम करता है, शर्त क्या है? किसी भी हाजी से पूछिए, हज एक टफ इबादत तो है, जहमत तो बहुत होती है, मेहनत तो बहुत, खास तौर पर हज नाम इस चीज का है कि हलाल चीजें नहीं खाएंगे। खाने पाबंदी लग गई, आप जाफरान वाली बिरयानी नहीं खा सकते। कपड़े पाबंदी लग गई, मैं आ रहा हूं इससे उस मिसाल पर जो मैंने बहुत दी। आपके आलीशान महलात हैं, 1 मिलियन का नहीं, 2 मिलियन का नहीं, 5 मिलियन का आपका विला है, लेकिन हज नाम है खेमे में बैठना, वो भी अगर मुज़दलिफा में है तो बगैर खेमे के फुटपाथ पर बैठना। हमारे पाकिस्तान में किसी की गुर्बत बयान करने के लिए मुहावरा होता है एक्सट्रीम, यार उसके बाद तो सर छुपाने की जगह नहीं, वो फुटपाथ पर बैठा हुआ। ये हज में बड़े से बड़े मिलियनर को भी फुटपाथ पे बिठा दिया अल्लाह ने लाके, ये सारी जहमत उठाई तो फिर आप मासूम हो गए। यही गदीर का पैगाम है कि खाली अपनी जगह बैठ के 2 नारे लगाने से मासूम नहीं बनोगे। जैसे ईद के दिन मासूम बने रमजान की मेहनतों और इबादतों के बाद, हज के दिन मासूम बने हज की जहमतों के बाद, गदीर के दिन मासूम बनोगे अगर तुम अली की सीरत पे अमल करके अपने आप को वैसा ढाल लो, फिर देखोगे कैसे मासूम बनते हो। और इसीलिए बस बिल्कुल आखिरी जुमले है मेरे, इसीलिए एक बात सुन लीजिए, वो ये है कि पैगंबर ने फरमाया गदीर में कि अली वली, मोहब्बत की बात नहीं की है। तो पहले दिन से पैगंबर कहते आ रहे हैं अली साहिब फजाइल है, तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं आज का वली है, मौला है, मौला। और फल युबल्लिगु शाहिदुल गायब, जो यहां है ना वो गायब को ये पैगाम पहुंचा दे। वल वालिदो अलवलद, और बाप अपने बेटे को पैगाम पहुंचा दे। क्या पैगाम पहुंचा दे? अली तुम्हारा मौला। तो आप तो कहेंगे हम तो अली को मौला मानते हैं। मौला जबानी चीज नहीं होती है, मौला अमली चीज है। मौला किसे कहते हैं? मोहब्बत जबानी चीज है और दिल की चीज है, खाली जबान नहीं, दिल की चीज। मौला जबान और दिल की चीज नहीं है, मौला अमली चीज है। बहुत 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 मैंने एक वाकया पढ़ा, वो छोटा सा, आज और भी छोटा कर देता हूं। ये है विलायत। कोई बाजार से खरीद के लाया गुलाम को और कहा तुम क्या खाओगे? गुलाम ने कहा मुझसे क्या पूछ रहे, मैं आपका गुलाम हूं, आप आका है, जो आका खिलाया गुलाम को वही खाना। तो अच्छा तुम कैसे कपड़े पहनते हो? हैरान होके कहा मुझसे क्या पूछ रहे, आप मेरे आका है, मैं आपका गुलाम हूं, जो पहनाएंगे पहनना पड़ेगा। अच्छा तुम कहां रहोगे? कहा मुझसे क्या पूछ रहे, मैं आपका गुलाम, आप आका जहां रखेंगे वहां रहना पड़ेगा। अंग्रेजी का कोई मुहावरा है शायद के बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ऐसे कुछ है ना। असल ये है कि गुलाम जो है वो चूजर नहीं है, जो आका खिलाए खाना है चाहे दिल ना चाह रहा, और जिससे आका रोक दे रुकना है चाहे बहुत दिल चाह रहा है, जैसे कपड़े पहनाए पहनना है चाहे बिल्कुल दिल नहीं मान रहा है, और जिससे रोक दे रुक जाना है चाहे दिल तड़पा जा रहा है, तुम भी वो पहनो, जहां रखे वहां रहे। ये है आका और गुलाम का रिश्ता। मौला के माने मुहिब नहीं है, दोस्त नहीं है, ये तो गैर शिया हजरात कहते हैं, अहले बैत ने जो हमें माने बताए वो तुम्हारा आका है और आका तुम गुलाम हो, यानी जब खाओ तो देखो कि आका तुम्हें क्या खिलाना चाहता है, जब पहनो तो देखो तुम्हें क्या पहनाना चाहता है, जब कहीं मकान खरीदो तो देखो तुम्हें कहाँ रखना चाहता है। यह है विलायत, गदीर का असली ऐलान यह है। और यहाँ पर दसवें इमाम की एक आखिरी हदीस पढ़ दूं, तीन बातें अर्ज करना थी तो ये तीसरी और आखिरी बात भी है और विलायत ही का पैगाम। सवाल ये, क्या हम ऐसा कैसे बने, ऐसा कैसे बने कि जो आका कह रहा है वही खाओ, हमारा दिल तो मैकडोनल्ड का बोर्ड देख के तड़प उठता कि चलो इसके अंदर हलाल आराम के बाद छोड़ो बिस्मिल्ला पढ़ लेंगे तो शायद हलाल हो जाएगी। हमारी औरत का दिल तो नंगा पुजंगा लिबास पहन के दिल चाहते हैं, हम भी ये लिबास पहने जो फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल पहन के घूम रही थी कल। तो अब ऐसा कैसे बने जो जैसा गदीर में रसूल चाह रहे हैं वैसा कैसे बने, ये दसवें इमाम ने तरीका बताया। आपको बहुत अजीब लगेगी ये हदीस और मुझे यकीन है कि मेरे बाद कुछ मुकर्रर तो जो मजलिस तकरीरें करें कहने देखिए गदीर के अंदर भी इन्होंने नहीं बख्शा। दसवें इमाम के घर में एक साहबी पहुंचा, यह आम घर नहीं, दसवें इमाम को मुतवक्किल ने कैदी बना के साबर्रा में एक छोटे से मकान में रखा था। इमाम का मदीने का घर नहीं, अपना घर नहीं, कैदखाना, अलबत्ता सातवें इमाम की तरह का कैदखाना नहीं, हाउस अरेस्ट टाइप का। जब वो गया इमाम के घर में तो उसने देखा कि इमाम के आगे ताजा कब्र खुदी हुई है, रोने लगा। समझा कि शायद इमाम की शहादत का वक्त आ गया और इमाम यहां अकेले हैं सामर्रा में, तो इसलिए उन्होंने इंतजाम किया पहले से अपनी कब्र। इमाम ने मुड़ के देखा भी नहीं और कहा फुला इब्ने फुला जो तेरे दिल में ख्याल आया अभी उसका वक्त नहीं आया। पहले तो घबरा गया कि जब देखा तक नहीं इमाम ने कि कौन है, तो मेरा मेरे बाप का नाम भी लिया, मेरे दिल की बात भी बताई। लेकिन फौरन ही उसके दिमाग ने कहा इसीलिए तो सारे दरवाजे छोड़ के इस दरवाजे पे आए हो। कहा मौला अगर अभी शहादत का वक्त नहीं आया तो ये कब्र किस लिए? कहा ये इसलिए ताकि मैं जिंदगी में जो काम करूं हर वक्त मुझे याद रहे कि एक दिन कब्र में जाके उसका हिसाब किताब देना है। खाने की चीज सामने आ गई, फौरन ख्याल करो कब्र में इस खाने का हिसाब किताब देना, ये हलाल है कि हराम। कपड़े पहनने का वक्त आ गया, तुमने अपनी वार्डरोब खोली, आज कौन सा लिबास पहनना, जो लिबास भी तुम्हारे सामने आया पहले सोचो कि कब्र में इसका हिसाब किताब देना। मकान लेने का मसला आया, इसमें इमिग्रेशन भी आ जाता, तो इमाम ने कहा यह कब्र इसलिए है ताकि हर वक्त याद रहे कि इसमें जाकर अपने खाने का लिबास का मकान का जिंदगी के हर काम का हिसाब किताब देना। जब आदमी के जहन में यह कब्र और मौत रहेगी ना तो वो वैसा गुलाम बनेगा जैसा गदीर खुम में रसूल ने हमको और आपको बनाना चाहा, जिसमें फिर हम गदीर के दिन घूम कर दोबारा उतने मासूम बनेंगे जितने पैदाइश के दिन मासूम थे। अच्छा आप सुनिए गदीर का खुतबा, आखिरी टुकड़े पर आइए। ये चीजें आपको कोई नहीं बताता होगा इसलिए कि मजमे की नाराजगी से अरे डरता है, और खासतौर पर आज के दिन जहां इतने दिनों के बाद इतना बड़ा मजमा मिला है तो जरा डर पैदा हो जाता है कि भाई आज तो आ गए आइंदा आए कि ना आए। लेकिन गदीर का खुतबा, गदीर का खुतबा, देखिये ये कमेंट बहुत जल्दी आने वाले हैं। मौलाना ने गदीर की खुशी के मौके पर भी कब्र को नहीं छोड़ा और अजाब को नहीं छोड़ा। अब गदीर का खुतबा सुनिए आखिरी हिस्सा, माशरन नास अत्तक्वा अत्तक्वा, अल्लाह से डरो, दो दफागा अल्लाह से डरो, ये खुतबा गदीर है। इहज़रुस्सा कयामत से डरो। फिर इमाम ने कुरान की आयत तिलावत की, इन्ना ज़लज़लतस्सा लिशयइन अज़ीम, कयामत की खड़ी जब आएगी और जमीन हिलाई जाएगी वो शय अजीम। उसके बाद सुनिए पैगंबर का जुमला है और पैगंबर ने हुक्म दिया है, मैं पैगंबर के हुक्म के ऊपर अमल कर रहा हूं। उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है चाहे वो मेंबर पे हो चाहे वो सफ में बैठे हो कि जो कमेंट्स करने वाले हैं उससे मेरा नाम हटा के मां रसूल का नाम रख ले आए। उस गुरु याद करो, ये गदीर में कह रहे हैं याद करो याद करो, उस गुरु याद करो, क्या कह रहे क्या याद करो, अल ममाता वल हिसाबा वल मवाजीना वल मुहासिबता बैन रब्बिल आलमीना वस सवाबा वल इकाबा, جس دن پیغمبر قدیر کے خطبے میں مولا کو جب ہاتھوں میں اٹھانے جا رہے ہیں اس سے ٹھیک پہلے، خطبہ بہت لمبا ہے نا، بالکل یہ آخری ٹکڑا، یاد رکھو اپنی موت کو، والمعاد، اور اللہ کے پاس پلٹ کے جانے کو، کیا منہ لے کے جاؤ گے، والحساب، اور حساب کتاب کو یاد رکھو، والموازین، اور اس وقت کو یاد رکھو کہ جب نیک اور برے عمل کو تولا جائے گا، والمحاسبہ بین رب العالمین، اس وقت کو یاد کرو جو تم اپنے خدا کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، والثواب والعقاب، اور یاد رکھو کہ ثواب بھی ملتا ہے اور سزا بھی ہوتی ہے. اور پھر پیغمبر نے اس حدیث پہ خطبے کا یہ ٹکڑا مکمل کیا، من جاء بالحسنہ فلہ اصیب، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اللہ اس کو ثواب دے گا، ومن جاء بالسیئہ فلا نصیب فی الجنان، اور جو ایک گناہ لے کر آئے گا اس کا جنت کے اندر کوئی حصہ نہیں. یہ خطبہ غدیر پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں میرے دل کو یقین ہو رہا ہے کہ آپ نے غدیر کے خطبے کا یہ حصہ نہیں دیکھا ہو. یہ خطبہ غدیر ہے، موت یاد دلائی، کیونکہ جب تک کہ قبر میں عمل کا جواب یاد نہ رہے آپ کو، آپ علی سے محبت کر سکتے ہیں، آپ علی کے نام پہ جان دے سکتے ہیں، لیکن آپ علی کو مولا نہیں مان سکتے. مولا کا مطلب ہی آقا ہے، یعنی آرڈرز، آرڈرز اینڈ آرڈرز. اسی میں میری تقریر کا بالکل آخری حصہ آ گیا، بالکل آخری حصہ، اور وہ یہ کہ اب اسی لیے مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے حلال و حرام کے علم کو حاصل کرے. کیوں؟ وہی تو بتائے گا نا کہ اس وقت مولا کا آرڈر کیا. آقا کا حکم مانو، حکم کہاں سے ملے گا، کیسے پتا چلے گا اس وقت علی کیا چاہتے ہیں. آقا کا آرڈر جو آتا ہے اس کا ایک سسٹم ہوگا نا. آسٹریلین گورنمنٹ اگر کوئی آرڈر آپ کو دیتی ہے، اعلان کر دیا جاب سیکر ملنا شروع ہو جائے گا، تو کوئی سسٹم ہوگا نا، وہاں کے ذریعے سے اعلان آتا ہوگا نا. تو اسلام میں کیا سسٹم ہے جہاں سے ہمیں پتا چلے کہ علی کیا چاہتے ہیں؟ اس سسٹم کا نام ہے علم فقہ اور حلال و حرام. اور عجیب بات مومنین کے لیے عجیب ہے کہ اسی خطبہ غدیر میں پیغمبر فرما رہے تفقہ فی الدین، دین کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو. دیکھو میں نے سارے حلال و حرام تم تک پہنچا دیے ہیں، اور اس کی معلومات علی سے لیتے رہنا، حلال کیا ہے حرام کیا. الستو بکو مولا کہا، یقین، من کنتو مولا کہا، ہمارا یقین، ساتھ میں یہ بھی کہا موت کو یاد کرو اور دین کے علم کو حاصل کرو تاکہ پتا چلے حلال خدا کیا ہے، حرام خدا کیا ہے، اور یہ علم صرف علی سے لو. دیکھیں اگر کہہ دیتے علی سے علم لو تو ہم کہتے اس سے مراد یہ تھی کہ سائنس کا علم، اس سے مراد یہ تھی کہ مثلا تاریخ کا علم، اس سے مراد تھی تو کہا حلال و حرام کا علم. کیونکہ جب تک کہ حلال و حرام کا علم نہ ہو آپ آقا کا حکم مان ہی نہیں سکتے. حلال و حرام کسے کہتے ہیں، آقا کا حکم کیا. مثلا میں بہت چھوٹی دو مثالیں دیتا ہوں آپ کو، اور یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت زیادہ اس میں غلط فہمیاں لوگوں کے بیچ میں ہیں. میں اپنے ساتھ پرچہ لے کے تو آیا تھا، لیکن ہاں ہے بھائی دو چھوٹی مثالیں کہ اگر علم نہ ہو تو آپ آقا کا حکم کیسے مانیں گے. یہ حضرت آیت اللہ سیستانی، میری عادت تو نہیں ہے پرچے لانے کی، لیکن حضرت آیت اللہ سیستانی کے دو فتوے. اب دیکھیے یہ مسئلہ معلوم نہ ہونے کے نتیجے میں کتنے لوگ نیکی سمجھ رہے ہیں اور وہ نیکی نہیں بن رہی ہے، وہ حرام بھی نہیں ہو رہا ہے. سوال یہ غدیر کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں اس وقت، کیونکہ غدیر کا روزہ سال کا اہم ترین روزہ، رمضان کے واجب روزوں کے بعد. لکھتے ہیں سوال کرنے والا، سوال کا نمبر ہے 35. اگر کوئی مستحب روزہ رکھے اور اسے ایک مومن بھائی روزہ کھولنے کی یا افطار کی دعوت دے، تو کیا اس کے لیے مومن کی دعوت کو قبول کر لینا مستحب ہے؟ جو عام طور پر مشہور ہے کہ اگر کوئی مومن آپ کو روزے، سنت روزے میں دعوت دے تو بات اس کی مانے، روزہ توڑنے ٹوٹے ہوئے روزے کا ثواب جڑے ہوئے روزے سے زیادہ، یہ عام طور پر مشہور ہے. تو پوچھا اس نے، جواب دیتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مومن کی دعوت نہیں مانی اور روزہ کنٹینیو کیا تو روزہ مکروہ ہو گیا. فرماتے ہیں کہ لا یکرہ البقاء علی الصوم، اگر آپ نے اس کی بات نہیں مانی اور روزہ کنٹینیو کیا تو یہ مکروہ تو نہیں، لیکن ثواب کھو دیا، کیونکہ مستحب ہے الاجابہ، मोमिन की दावत को कबूल करना। कब? जब वो सीरियस दावत हो, बाकायदा एक प्रॉपर दावत हो। ला वो दावत नहीं, माँ आताद हन्नास, जो लोगों की आदत बन गई है, मिन तकदीम हलवा और शाय लिल इफ्तार। या आप रोजे से, उन्होंने आपके सामने चाय रख ली, बिस्मिल्लाह चाय पीजिए। रोजा तुड़वाना, वो उन्होंने आपके सामने को मिठाई रख दी, या अगर रिजविया सोसाइटी या अंचोली में है तो पान की ग्लोरी आपको पेश कर दी, बिस्मिल्लाह ये पान खा लीजिए। रोजे रखे इसलिए जाते हैं ताकि तुड़वाएं, हम तुम्हारा तुड़वाएं रोजा, तुम हमारा तुड़वाओ। फरमाते हैं ला ये नहीं है मोमिन की दावत के इसके लिए रोजा तोड़ ले। और मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि कितने मोमिनीन ने मेलबर्न में गदीर के इतने मुस्तहब रोजे का सवाब खो दिया इस गलतफहमी की वजह से। इतना यानी आप देखें, गदीर की रात को जो मजलिस पर जो तकरीरें की गई उसमें गदीर के रोजे का सवाब बताया गया। 60 हज या 60 साल के हज या जिंदगी भर के हज या जिंदगी भर की इबादत, ये सवाब बताया उस रोजे का। वो रोजे टूटे हैं अगले दिन, किसी का 8 बजे, किसी का 9 बजे, किसी का 10 बजे, और रखे इस नियत से जाते हैं। क्या ये इसमें शामिल नहीं है कि आपके सवाब मिलेगा? जो सीरियस बाकायदा प्रॉपर किसी ने आपकी एक दावत की है उस दिन, वो एक छोटी सी बात। आगे सिस्तानी का दूसरा मसला, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, मसाइल का वक्त नहीं है, लेकिन जहां तक आपको गदीर खुम खुतबा पढ़िए, गदीर खुम का duaz.org में इंग्लिश में पूरा खुतबा मौजूद है, इसके अलावा भी कई किताबों में। आगे सिस्तानी का मसला सुनिए, फरमाते हैं कि अगर कोई इफ द पर्सन, एक आदमी मकान के लिए मॉर्गेज ले रहा है, कंसिडर द मॉर्गेज टू बी ए लोन, वो मॉर्गेज को एक लोन समझ रहा है, देन इज अमाउंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम खुम्स, उस पर खुम्स वाजिब नहीं है क्योंकि कर्जे पे खुम्स नहीं, बट ही विल कंसीडर्ड सिनफुल, बट लेकिन वो गुनाहगार माना जाएगा मॉर्गेज लेने पर। ऑन द अदर हैंड इफ दे टेक द मॉर्गेज विद द इंटेंशन ऑफ इस्तिनकास, लेकिन अगर वो इस्तिनकास की नीयत से मॉर्गेज ले रहा, देन दे आर नॉट कंसीडर्ड सिनफुल, वो गुनाहगार नहीं। मसला आपका क्या है कि मकान लेना है, गाड़ी लेना है, मॉर्गेज के बगैर मिल नहीं सकती है, क्या करें? करे का हल मौजूद है, इस्तिनकास की नियत से ले तो ही इज नॉट कंसीडर्ड एट सिनफुल, कोई गुना नहीं। और यही पैसे आप मॉर्गेज लोन की नियत से ले तो आप सिनफुल गुनाहगार। मैंने एक मोमिन को जब यह मसला बताया, एक को नहीं 50 को, कि वो आपने मकान जो खरीदा था ये इस्तिनकास की नियत की थी, उन्होंने कहा मौलाना पहले तो बताइए इस्तिनकास किस चिड़िया का नाम। मैंने कहा आगे क्या बताऊं जब आपको यही पता नहीं है और आप ऑलरेडी मॉर्गेज ले चुके। देखिए वाजे बात, उस मकान का खरीदना गुनाह, ठीक है, उसमें नमाजें सही है और रोजे सही है, लेकिन गुनाहगार हुए आप। और कौन सा गुनाह? सूद का गुनाह। जरा सा डाइवर्ट कर देते हैं सिर्फ अपनी नीयत को, कोई आपको प्रैक्टिकली कोई आपको एक्शन नहीं करना, सिर्फ नीयत। इस्तिनकास, ही इज नॉट कंसीडर्ड एज ए सिनफुल, वो गुनाहगार नहीं। और पहले वाले में कहा कि अगर लोन की नीयत से लिया कि मैं कर्जा ले रहा हूं तो ही इज कंसीडर्ड एज ए सिनफुल बिकॉज ही इन्वॉल्व हिमसेल्फ, ये इसमें लिखा हुआ, इन हराम ट्रांजेक्शन एंड इंटरेस्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन। आका का हुक्म मानना, वो तथीरा की सनद लिए हुए, और हमारे यहां हराम आ रहा है खाने में भी, गाड़ी में भी, मकान में भी, पैसे में भी, सिर्फ एक मसला न जानने के नतीजे में। आका की मुखालिफत हो रही है, हराम का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट में हराम का मतलब क्या हुआ कि आपने जिस अली को मौला माना आपने उसकी मुखालिफत की, लेकिन आपने बगावत की नीयत से मुखालिफत नहीं की है, लाइलमी की वजह से मुखालिफत हो गई। इसीलिए खदीर के खुतबे के दोनों जुमले याद रखिए, मौत को याद करो और कब्र के हिसाब किताब को, वाले हिसाब उसको याद करो, और हलाल और हराम का ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करो। अगर ऐसा मोमिन बनेगा तो गदीर की ईद ईद अकबर, क्या हज आपको पाक करेगा जो गदीर आपको पाक करता, क्या रमजान आपको पाक करेगा जो ईद गदीर आपको पाक करती है, इससे ज्यादा आपको पाक करके मासूम बनाने वाला और कोई अमल नहीं। अगर आप उस तरह से अपने आप को अली की गुलामी में दें जो पैगंबर ने खुतबा गदीर में कहा, जुमला तो आपने लिया पैगंबर का, मन कुन तो मौला फाली और मौला, और इसका इंटरप्रिटेशन कर दिया अपने हिसाब से, कि नारे लगा दो, नारे भी इंसान मौला की मोहब्बत में आके जोश में नारे तो लगाता, नारे भी लगाओ, वाह वाह भी करो, सब कुछ करो, लेकिन गुलाम, गुलाम का असल काम है हुक्म मानना। जब ऐसे आप बनेंगे तब गदीर के हवाले से बस खत्म बात। हाँ, गदीर के हवाले से आपकी जिम्मेदारी तो पूरी होगी, खुदा की सबसे बड़ी खुशखबरी भी पूरी होगी। वो क्या है खुशखबरी? आखिरी आखिरी जुमले हैं, इससे पहले दो छोटी सी गुजारिश। नंबर एक, सिलसिला चलाना, खदीर का मतलब है अली के गुलामी, वो तुम्हारा आका, तुम्हें उसका हुक्म मानना। गुलाम के पास कोई चॉइस नहीं होता, गुलाम इज नॉट अ चूजर कि ये खाऊं वो पहनूं वहां रहूं, जो अली कहे वो तुम्हें करना, पहली बात ये हो गई। और ये पता चलेगा जब आपके पास दीन का इल्म होगा, यानी फिका का इल्म, खास पैगंबर का लफ्ज है हलाल और हराम का इल्म। अल्हम्दुलिल्लाह अल असर इस्लामिक सेंटर मेलबर्न आज चौथे साल में दाखिल हो गया, चौथी सालगिरह। और इस सेंटर के कयाम का सबसे बड़ा मकसद यही था कि ज्यादा से ज्यादा साहिबान ईमान को अकीदे मजबूत करने और जो सही मानों में अली की गुलामी है उसका तरीका बताया जाए। इब्तदाई मराहिल में हर प्रोजेक्ट मुश्किलात का शिकार होता है, तो अभी तक हम उस स्टेज पर नहीं आए जो बहुत पहले से हमारा ऐलान था कि यहां बाकायदा हलाल और हराम की क्लासेस होंगी और हर वीक न सही तो हर मंथ फिका का एक सेशन होगा, लेकिन इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और वहां तक हम पहुंचेंगे। तो ये अल असर के हवाले से बनाने वालों को भी मुबारकबाद देता हूँ और आने वालों को भी मुबारकबाद देता हूँ और मदद करने वालों को भी मुबारकबाद देता हूँ। ये इसकी चौथी, ये गदीर के ऐलान का अमली पहलू है। और वो जो मैंने कहा कि जब ये गदीर पर आप अमल करेंगे तो खुदा ने खुशखबरी दी है मोमिनों को, या एसुल लजीन अकफर, जहां गदीर का ऐलान आ जाएगा वहां काफिर मायूस हो जाएंगे। जब तक गदीर नहीं थी तब तक काफिरों को उम्मीद थी कि हम इस्लाम का खात्मा करेंगे, लेकिन कुरान ने कहा, आयत बहुत मशहूर उसी आयत अलियोम वाली आयत के साथ, कि काफिर मायूस होंगे। काफिर क्यों मायूस होंगे अगर जब गदीर का ऐलान आ गया? लेकिन जो गदीर का हक है, अब वो सुनिए, गदीर का वो ऐलान जिससे काफिर मायूस होंगे। मौलाना अजहर हसन सैदी साहब का मैं हवाला देता हूं, उनका एक नुक्ता और सुन लीजिए। मैं अपने नाम से भी पढ़ सकता था, लेकिन जिसका हक है वो अदा करें। फरमाते हैं कि पैगंबर ने ऐलान इस्लाम कर दिया, वो दावत-ए-ज़िल-अशीरा से तकरीर शुरू हुई थी ना, वही खत्म हो रही, और मेरी तकरीर के बाद आपको 3-4 मिनट और बैठना है। बरादर मोहतरम जकी पंजू साहब जरा साहब से खिताब करेंगे, लंबे, मैंने उनसे पहले ही कह दिया, वो खुद भी ख्याल करते हैं कोई लंबी तकरीर नहीं होगी। उसके बाद ये बच्चे हैं तो केक कटिंग की सेरेमनी भी होगी, और आप बड़े हैं तो कोई न्याज का भी इंतजाम होगा। मौलाना जैदी साहब दावत-ए-ज़िल-अशीरा की बात करते हैं। दावत-ए-ज़िल-अशीरा में अली ने क्या कहा? ना नासिर हूं या रसूल अल्लाह, मैं आपका मददगार हूं। अच्छा, पैगंबर अगली सुबह को, दावत-ए-ज़िल-अशीरा तो घर वाले और खानदान वाले थे, अब आम लोगों को पैगाम पहुंचाना था, पैगंबर घर से बाहर निकले तबलीग के लिए गए। अरब ने वहां पहले से ही अपने बच्चे तैयार कर दिए थे कि अगर मोहम्मद ने ये ऐलान जो कल दावत में किया, अलल ऐलान मक्के में किया, तो तुम अच्छे तरीके से मोहम्मद पे पथराव करना और उनको परेशान करना। खुद तो नहीं आ सकते सामने, तो पता है ना कि अगर हम आ गए तो वहां से भी जवाना ने बनी आशिम आएंगे, बच्चों को दबा दो। अब बच्चों की बात क्या होती है, लोग अरे बच्चा छोड़ दो भाई, बच्चे तो ऐसी हरकतें करते ही है। तो नाचे, अच्छा बच्चे भी बड़े खुश कि हर जगह पेरेंट्स अपने बच्चों को रोकते हैं बदतमीजी से, सिवाय मेलबर्न के। मेलबर्न में भी सब नहीं, लेकिन काफी हद तक आजादी है। यहां तो खुद वालिदैन कह रहे हैं कि बेटा ये पत्थर संभालो और कल वो आए तो उस पर पथराव करना। बच्चों को तो वैसे ही आदत होती है चीजें हाथ में है तो उठा के फेंकने की, यहां तो वालिदैन ट्रेनिंग दे रहे। चुनांचे पैगंबर अपने घर से निकल के बाहर आए, वो गली बनी हाशिम की मुड़े और बाहर आए तो सारे बच्चे खड़े हुए, शुरू कर दिया पथराव। लेकिन अल्लाह का रसूल वो अपनी तबलीग में लगा रहा, गया खाने काबा के सहन तक गया, जो तबलीग करना थी वो की और वापस आए। सबने ये मंजर देखा, किसी पे असर नहीं हुआ, अली ने ये मंजर देख लिया। जब आए पैगंबर तो अपने घर में ही आए, पैगंबर जख्मी, इतना खून बहा के पैगंबर की जूतियां खून में भर गईं। पैगंबर का खून पाको पाकीजा होता है, कोई फिक्री मसला मेरे पास लेके ना आ जाए। ये खाने काबा तक गए। अली ने देखा, हैरान होगा, या रसूल अल्लाह आप इतने जख्मी कैसे हो गए? कहा क्या है अली, ये अरबों ने अपने बच्चे मेरे पीछे लगा दिए और उन्होंने आज पथराव किया। कितना शाख गुजरा होगा जुमला। अल्लाह के रसूल, मैंने आपसे वादा किया था कल रात को कि मैं आपकी मदद करूंगा, मददगार के होते हुए आप कैसे जख्मी हो गए? ये जैदी साहब का एक खास जुमला है, इसमें एक लफ्ज उर्दू का जरा मुश्किल आ जाता है लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। कहा कि मेरे होते हुए कल आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ चलूंगा। अगले दिन पैगंबर चले और देखिए, ज़िल अशीरा का गदीर से बहुत गहरा ताल्लुक है, बिल्कुल यहां गदीर जैसा मंजर बना। गदीर में क्या मंजर था? पैगंबर लोगों के सामने है लेकिन पैगंबर के आगे अली हैं, अली सामने है, पैगंबर अली के पीछे छुपे हुए हैं। जरा सा अपने जहन में कोई नक्शा तो लेकर आइए ना, क्या बहुत लंबी तकरीर हो गई है, क्या बहुत ज्यादा इस वक्त भूख का वक्त है? मंजर लेकर आइए कि पैगंबर है, पैगंबर के आगे अली। पैगंबर को अगर कोई गदीर में देखना चाहे, पहले अली के चेहरे की जियारत करेगा फिर पैगंबर तक जाएगा, क्योंकि पैगंबर के हाथों में है ना। ये मंजर पहले ज़िल अशीरा में आया, क्योंकि अरब के बच्चों को कल बहुत मजा आ गया था, बहुत मजा आया था। उन्होंने अपने दोस्तों को भी बुला लिया था दूर दूर उसके महलों से कि भाई आ जाना, बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी होती है। सब पत्थर लेके तैयार खड़े हैं, पैगंबर निकले, एक मरतबा बच्चे जरा घबरा गए, ऐसा लगा पैगंबर अकेले नहीं है, आगे आगे अली चल रहे हैं, पीछे पीछे अल्लाह का रसूल है। वही मंजर है जो गदीरे खुम में था ना, आगे आगे अली थे, पीछे रसूल थे। बच्चों ने देखा, पहले तो जरा सब घबराए घबराए कि आज रसूल अकेले नहीं है, किसी को लेके आए, लेकिन फिर जरा दिल को तसल्ली हो गई। आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप मोमिन दिमाग से सोच रहे हैं, जरा काफिर दिमाग से सोचिए। जरा उनको तसल्ली हो गई कि आप पैगंबर किसी को लाए हैं, लेकिन वो कौन है? 10 साल का बच्चा, हमारा जैसा ही तो है, मुकाबला करना क्या मुश्किल है? तारीख ने बताया अली से हमेशा उसने मार खाई है जिसने अली को अपना जैसा समझा। अच्छा, आप जब देखा कि तो हमारे ही जैसा, हमारे 10-10, 12-12 साल के बच्चे, पथराव शुरू करना चाहा, अभी पत्थर संभाल ही रहे कि अली की जेबों में खजूर की गुठलियां थी और अली ने खजूर की गुठलियां उठा के मारना शुरू की। जिस बच्चे की कमर पे पड़ी, कमर पकड़ के बैठ गया और एक ही जुमला का, कसमना अली, कसमना अली, कसमना अली। ये कसमना स्वाद के साथ जब आए ना, इसके माने तोड़ने वाला। अल्लाह का नाम है कासिमुल जब्बारीन, जब्बारीन की कमर को तोड़ने वाला। अच्छा, आप याद रखिए, ओहद के बद्र के मैदान में जब मेरा मौला आया था ना, तो सारे काफिर यही बच्चे थे जो ओहद के मैदान में जाके जवान हो गए, सबने कहा था कासिम आ गया, कासिम आ गया हमारी कमर तोड़ने वाला। लेकिन वो तो इस वक्त नहीं बता सकता हूं, अभी तो यहाँ की बात। अली के हाथ से खजूर की गुठली चली, जिस बच्चे की कमर पे पड़ी, समझिए कमर पकड़ के बैठ गए, कमर ही उसकी टूट गई और सारे बच्चे वहां से भागे, पैगंबर गए और खैरियत से वापस आ गए। अच्छा, पैगंबर कल गए थे तो जख्मी होके आए थे, आज भी वही पैगाम लेके गए हैं, खैरियत और सलामती के साथ आ गए। कल और आज में फर्क क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह तो कल भी था, वो आज भी, और आज अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह है तो ये कल भी था, कुरान जो आज है तो कल भी था, जिब्राइल जो आज है वो कल भी थे, इस्लाम जो आज है वो कल भी था, जो सारी चीजें आज हैं वही कल भी थी, फिर भी कल रसूल जख्मी हो गए। आज रसूल महफूज है इसलिए कि जो आज है वही कल भी था, मगर एक फर्क है कि आज अली वलीउल्लाह है, कल अली वलीउल्लाह नहीं था। असल में तो नारा मुझे इसके बाद वाले जुमले पे चाहिए, जो मेरा आखिरी जुमला, मेरा क्या जैदी साहब का नहीं, मौलाना अजहर हसन जैदी, यहाँ कई जैदी और भी बैठे हुए हैं, तो मौलाना अजहर हसन जैदी, भाई कल भी पैगंबर थे, आज भी पैगंबर, कल वही इस्लाम था, एक ही जुमला कहते हैं रसूल, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, यही कहते हैं। कल इसमें जख्मी हो गए और आज पैगंबर महफूज रहे, जबकि कल और आज में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा सिवाय एक के, अली वलीउल्लाह। लेकिन अली वलीउल्लाह भी तो कल था, कि अली पैदा नहीं हुए थे,
پیدا ہو چکے تھے، کل علی بن ولی اللہ کے ہوتے ہوئے بھی رسول زخمی ہو گئے، آج علی بن ولی اللہ نے رسول کو بچا لیا، کیونکہ فرق یہ تھا کل علی بن ولی اللہ تھا مگر علی بن ولی اللہ اور رسول اللہ میں فاصلہ تھا، وہ گھر میں تھے یہ گلیوں میں ہیں، آج علی بن ولی اللہ بلا فصل ہو گیا۔ اسلام بچتا ہے جب علی بن ولی اللہ بلا فصل ہو جاتا ہے۔
خدا بندہ تجھے واسطہ میرے مولا کی ولایت کی اس نعمت عظمیٰ کا، خدا بندہ تجھے واسطہ میرے مولا کی اس مدد رسول کا، جتنے صاحبان ایمان آج کی اس محفل میں جمع اور ماشاءاللہ اس موسم میں اتنی بڑی تعداد میں، خدا بندہ ان سب کو دنیا اور آخرت میں واقعا علی کا ایسا موالی بنا جیسا علی ہم سے چاہتے ہیں، اور اسی کے تحفے دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی دور فرما، اور دنیا بھر کے صاحبان ایمان جو یہاں ہیں وہ تو ہیں، دنیا بھر کے صاحبان ایمان کو اس دنیا میں علی کی مدد، آنے والی دنیا میں علی کی شفاعت نصیب فرما۔ خدا بندہ ہماری موت ولایت علی پر آئے اور جنت میں ہم عزاداران حسین بن کے داخل کیے جائیں۔ جو لوگ آج کی مجلس میں تقریر میں ہیں اور العصر کی انتظامیہ کے حوالے سے جن جن لوگوں کا رول ہے، ان سب کے مرحومین کو اعلی علین میں مولا علی کی شفاعت نصیب فرما۔ خدا بندہ علی لوائے حمد اٹھائے چل رہے ہوں، پیغمبر علی کے پیچھے ہوں اور ہم پیغمبر کا دامن تھامے ہوئے جنت میں جا رہے ہوں گے، وہ وقت لا، اور اس سے پہلے پہلے قدیر کے جشن کو صحیح معنوں میں منانے کے لیے علی کے وارث، علی کے بیٹے، علی کے مشن کو پورا کرنے والے، ولایت کو مکمل کرنے والے، اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ چار منٹ کی اور زحمت ہے، آپ تشریف رکھیے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کیک کٹنگ کی سیرومنی ہوگی۔
برادر سسٹرز، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ لوگ کا، مائک لے لیتا ہوں۔ ہلو، میں آپ لوگ زیادہ وقت نہیں لوں گا، میکسیمم 4 منٹ۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب نے جیسے کہا 3 سے 4 منٹ میرے پاس ٹائم ہے۔ میں 2 اعلان آپ لوگ کو کرنا چاہتا ہوں آج کے دن عید غدیر۔ سب سے پہلے آپ لوگ کو مبارکباد، ایک آپ اتنی دور سے آئے، اسپیشلی آج بارش کا دن تھا، آن لائن نہیں سنا آپ لوگوں نے، ماشاء اللہ ہم سب کے ساتھ غدیر بنائی۔ میرے والنٹیئرس جو یہ ایک پورا ٹیم ورک تھا، ہم نے 4 سال اس جرنی کو کیا، آج الاسر کی ماشاء اللہ 4th ایڈیشن رہی ہے، ہم نے اس 4 سال میں کافی اچیومنٹ کی، یہ پورا ایک ٹیم ورک تھا۔ میرے والد صاحب کا خواب تھا یہ ماشاء اللہ جو انہوں نے دیکھا تھا، میری والدہ نے کافی سپورٹ کیا اس پروجیکٹ میں، موٹیویٹ کیا مجھ کو، یہ خواب ہم نے 2005 میں دیکھا تھا جب میرے والد کا انتقال سے پہلے، اور ان کا انتقال 2005 میں ہوا تھا، جس میں میری والدہ ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کرتے رہتی۔ ایک ہم نے پروجیکٹ لیا، اس میں ہمیں ناکامی ہوئی، پرمٹ میں ہم نے پھر دوبارہ اس کو ٹرائی کیا، کانسٹنٹ فائٹ کرتے رہے، اور میری وائف نے کافی اس میں سپورٹ کیا، میرے بیٹے نے سپورٹ کیا، میرے والنٹیئرز نے کیا، جس میں پورا ٹیم ورک تھا۔ ان 4 سال میں ہمیں اس ٹیم کو بنانے میں ہمیں ٹائم لگا، لوگوں نے سے مجھے ہی آگے دیکھا، لیکن میں ایک اکیلا نہیں تھا، یہ پورا ٹیم ورک تھا، جس میں ہمارے ٹیچرز تھے، سنڈے کو ہمیشہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے والنٹیئرز تھے، ہمارے نیاز کمیٹی تھی، ہمارے والنٹیئرز کار پارک کے تھے، میڈیا ٹیم تھی۔ تو یہ پورا ایک جو کام ہوا ہے، اس میں ایک شخص نہیں تھا، اس میں پوری ٹیم تھی۔ آج ماشاء اللہ الحمد للہ یہ ٹیم ساری کھڑی ہے اسٹرانگ، اگر میں ہوں یا نہ ہوں یہ چلا سکتی ہے، اس میں مجھے ٹائم لگا ان 4 سالوں میں۔ اب ہم نے ایک اناؤنس کرنا تھا، میں صرف آپ کو 2 اناؤنسمنٹ کروں گا، ایک کافی خوشخبری ہے، دونوں ہی خوشخبری ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کہ اب ہم کمیٹی بنا رہے ہیں، جس میں میری جو جاب ہوگی وہ بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہوگی، جو بھی مینٹیننس ہوگی بلڈنگ میں اس میں میرا کام ہوگا بلڈنگ کا، باقی جو کمیٹیز آگے ہوگی جیسے ہر اداروں میں ہوتی ہے جس میں پریسیڈنٹ وائس پریسیڈنٹ ٹریجری سیکرٹری اور کمیٹی ممبرس تو ہم وہ بنانے والے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ہم آپ لوگ کو محرم سے پہلے بنا لیں کمیٹی اب یہ آپ لوگ کا تعاون ہے کہ آپ لوگ آگے آئیے اس میں نامینیشن ڈالیں نام اور اس میں جوائن کریں ٹھیک ہے سو جیسے میں نے کہا کہ میں صرف ایک فرنٹ میں تھا جو ساری کمیٹیوں کو سیٹ کر رہا تھا جس میں کافی جرنی تھی جیسے مدرسہ جب ہم نے ایم ایس سی کا سلیبس لیا وہ بھی کافی ٹف تھا پھر ہم نے کوآرڈینیٹرز بنائے ماشاء اللہ ارشاد بھائی ہمارے قرآن کی کوآرڈینیٹرز ہے اسلامک سسٹر کوثر ہے اور میں نام شاید بھول جاؤں گا کافی نام ہے اور میرے پاس ٹائم کم ہے اس لیے سارے کوآرڈینیٹرز بنا کے ہم نے ایک ٹیم بنائی مدرسے کی جو بیک بون ہے وہ وہی ہمارے کوآرڈینیٹرز ہیں جو بیک بون یہاں پر آپ نظر آ رہے ہیں وہ وہی ہمارے جو والنٹیئرس ہیں اب آپ لوگ آگے آئیے اور اس باقی جرنی کو پورا کریں ان شاء اللہ ٹھیک ہے کوئی سوال آپ لوگ کا بھائی کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے جی عسکری بھائی اس کی دو وجوہات ہیں ایک وجوہات میں جو آپ کو بالکل ممبر کے سامنے ہی کھڑا ہوا ہوں میرا کام تھا صرف اس بلڈنگ کو بنانا اور ایک ڈسپلن پہ لانا جو ماشاء اللہ ساری چیزیں آ چکی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب یہ چیزیں اگر ہو سکتا ہے کل میرا انتقال ہو جاتا مجھے ابھی نہیں پتا ایک منٹ کے بعد میرا انتقال ہو جاتا تو میں چاہتا ہوں کہ اب اچھے ہاتھوں میں یہ چیزیں آ جائیں اور اس کو چلانا اسٹارٹ کریں یہ جو والنٹیئرز ہیں کبھی کبھی مجھ سے گھبراتے ہیں کہ ذکی بھائی آپ ڈیسیشن لیں ٹھیک ہے تو اب میرے والنٹیئرز اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں اور مومنین بھی دیکھ چکے ہیں اگر کوئی جوائن بھی کرتے ہیں ایگزامپل میں دیتا ہوں میں کلیم بھائی آپ کا ایگزامپل دیتا ہوں ٹھیک ہے برانی بانے اگر کلیم بھائی نامینیشن میں آتے ہیں فرض کرے پریسیڈنٹ یا وائس پریسیڈنٹ میں ٹھیک ہے ان کو پتہ ہے سسٹم کیسے چل رہا ہے تو اب کوئی بھی آ کے یہاں چلا سکتا ہے سسٹم ہم نے چلا چکا ہے ماشاء اللہ دوسری جو میں نے کہا آپ لوگوں سے خوشخبری کہوں گا اب میرے پاس شاید ایک ہی منٹ رہے گا میں نے کافی ٹائم دے رہا ہوں صحیح جو دوسری خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے ایک ماشاء اللہ پروجیکٹ بنایا ہے ہمارا سیٹلمنٹ لاسٹ ویک ہی ہوا ہے دو ویک پہلے میں جو کراچی کے یہاں رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں محفل مرتضیٰ کو آپ لوگ شاید جانتے ہو کہ محفل مرتضیٰ اس کے تین بلاک چھوڑ کے تین گھر چھوڑ کے ہم نے ایک وہ لیا ہے ایریا جو گھر بنا ہوا ہے ٹرپل اسٹوری کا 1000 یارڈ کا ہے جس میں ہم الاثر ہوم کے نام سے کھول رہے ہیں جو یتیم خانہ ہوگا لیکن وہ یتیمیں نہیں ہوگی وہ ہماری شہزادیاں ہوگی جس اسکول میں ہم جیسے جاتے ہیں وہیں اسی اسکول میں پرائیویٹ اسکول میں وہ بچیا جائے گی اور اسی طرح جیسے ہم لباس پہن رہے ہم اپنا پورا جو گزار وہ کر رہے جو بھی ہم اپنی لائف میں وہ بچیا بھی ویسے ہی ہماری شہزادیاں ہوگی تو ہم نے ماشاء اللہ ایک اور پروجیکٹ کیا ہے جس میں میں نے کہا کہ دو ہفتے پہلے سیٹلمنٹ ہوا ہے اور ایک آپ لوگوں سے دوبارہ میں گزارش کروں گا دعا کرنا کل اتفاق سے ہم نے برابر والوں کو بھیجا ہے جو ایک اور پلاٹ اس کے برابر میں ہم اسے بھی لینا چاہ رہے ہیں اگر وہ ہمیں کل میٹنگ میں مل جاتا ہے سنڈے کو انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ بیٹھ کے بات کرے گی اگر وہ ہمیں مل جاتا ہے تو ہم بوائز کا بھی کر لیں گے تو گرلز اور بوائز کا ہمارے شہزادی اور شہزادے ہمارے بالکل برابر میں ہوں گے تو ہم نے وہ سوچا ہے انشاءاللہ 35-40 کا ہم نے ٹارگیٹ لیا ہے لیڈی شہزادی اور 35-40 شہزادے تو وہ اگر پروجیکٹ میں اسٹارٹ کروں گا عسکری بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا کہ میں اس کو لک آفٹر کر سکوں گا اور پھر میں رائٹ نہیں ہوں کہ یہاں میں لک آفٹر کر سکوں سو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر میرا وہ ٹائم مجھے بھی تقریباً سال ڈیڑھ سال لگے گا اس پروجیکٹ کو سیٹ کرنے کے لیے اس کے بعد ہمارے اگر میری زندگی رہی تو ہمارا ہے کہ بیواؤں کا جو ویڈوز ہے ان کا ہے اور اولڈ سٹیزن ہاؤس ہے تو میں اس راستے پہ جا رہا ہوں یہ راستہ اس وقت یہاں پہ بالکل سیٹ ہو چکا ہے بس یہی آپ سے گزارش تھی صحیح اس لیے امید کرے بس قبول کرے آپ دعا کریں ہم سب کے لیے اللہ قبول کرے ہم سب کے لیے مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہوگی پاس میں مجھے معاف کرے گا ٹھیک ہے اور میں بھی کوئی فرشتہ نہیں ہوں صحیح غلطیاں انسان کا ہوں غلطیاں ہو سکتی ہے مجھ سے معاف کرے گا اب جو ٹیم آئے گی انشاءاللہ اب ہم اس کو ہینڈ اوور کر دے گی پراپرٹی ٹھیک جزاک اللہ آپ لوگ کا اور میں بس یہ کہوں گا کہ جتنے میرے والنٹیئرز ہیں جو ٹیم ہے ہماری اللہ سر کی سب مومنات کے لیے سارے ان کے گھر والوں کے لیے اور میرے والد صاحب کے لیے سورہ فاتحہ کی جزاک اللہ میں سب بہت بہت شکریہ
متوجہ زیارت
السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلى جدک وابیک امیر المؤمنین ویا صوب الدین وقاتل المشرکین وقائد الغر المحجلین وامیر المؤمنین وامام المتقین وعلى امك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى اخيك الحسن المجتبى وعلى اولادك واصحابك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابا الحسن علي ابن موسى الرضا، السلام عليك وعلى آبائك الطيبين وأبنائك الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان، الأمان الأمان يا مولانا من فتنة الزمان. أجل الله تعالى ظهورك وسهل الله تعالى نورك واجعلنا من أنصارك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومحبط الوحي ومختلف الوحي والتنزيل والملائكة جميعا ورحمة الله وبركاته. تو بچوں کو آگے کر دیجئے تاکہ کیک کٹنگ کی سیرومنی پوری ہو.
لگاتے ہیں دری نعرے یہ چہرے مسکراتے ہیں، لگاتے ہیں دری نعرے یہ چہرے مسکراتے ہیں، لولی لگاتے ہیں دری نعرے، لگا کے ہیں دری نعرے یہ چہرے مسکراتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، نعرے حیدری.
یہ اطلاعی ہے کہ حجت الاسلام مولانا شیخ ادریس الحسن صاحب گزشتہ چار دن سے بہت بیمار ہیں، تو پروردگار اس عید قدیر کی برکتوں کے حوالے سے اور صاحب قدیر جناب امیر کی برکتوں کے حوالے سے انہیں شفائے کاملہ عطا کرے. امن یجیب کی ہم تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. پروردگار اس آیہ کریمہ کا واسطہ اور ان سب سے بڑھ کر مولائے متقیان کا واسطہ مولانا شیخ ادریس الحسن صاحب کو شفا کاملہ عطا فرما، باقی تمام بیماروں کو بھی شفا عطا فرما، اور بیمار اسلام کو شفا دینے کے لیے اپنے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.